मैं हूं विभूति शर्मा और आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार। 29 दिसंबर 2018 के हिंदी बुलेटिन में शामिल है। लाखों बच्चे झेल रहे हैं युद्धों और लड़ाई झगड़ों का दंश, विश्व समुदाय रहा नाकाम। अफगानिस्तान में भीषण आत्मघाती हमले की तीखी निंदा, शांति स्थापित करने की पुकार। फिलिस्तीनी इलाकों में 2018 के दौरान करीब 300 फिलिस्तीनियों की मौत, 29,000 जख्मी। यमन के हुदायदा बंदरगाह शहर में सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने की घोषणा और इंडोनेशिया में सुनामी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए व्यापक अभियान। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि दुनिया भर में लड़ाई झगड़ों और संघर्षों की वजह से लाखों बच्चों के जीवन को गंभीर खतरा है और विश्व उन बच्चों को समुचित सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम साबित हुआ है। यूनिसेफ ने शुक्रवार को कहा कि देशों के राष्ट्रीय नेताओं को हिंसा के लिए जिम्मेदार पक्षों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने का इंतजाम करना होगा। यूनिसेफ के आपदा कार्यक्रमों के निदेशक मैनुएल फॉन्टेन का कहना था कि दुनिया भर में संघर्ष और लड़ाई झगड़ों वाले देशों में लाखों बच्चों को वर्ष 2018 के दौरान भीषण हिंसा का सामना करना पड़ा है और विश्व उनकी ठोस मदद करने में नाकाम रहा है। मैनुएल फॉन्टेन का कहना था कि आज इतने देशों में हिंसा जारी है जितनी कि पिछले करीब 3 दशकों के दौरान किसी एक समय में नहीं रही। उनका ये भी कहना था कि संघर्ष और युद्ध के लिए जिम्मेदार सभी पक्ष धड़ल्ले से जुल्म और ज़ातियां कर रही हैं, जैसे कि उन्हें कानून या दंड भुगतने का कोई डर नहीं और इस चलन में कमी होती नजर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कहीं ज्यादा उपाय किए जा सकते हैं और किए भी जाने चाहिए। गहराई से जांच करने पर पता चलता है कि युद्ध और हिंसा वाले देशों में बच्चों के मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। इनमें बच्चों को ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना, बच्चों का अपहरण करना, बच्चों की जबरन शादी करना और लड़कियों के साथ बलात्कार करने जैसे अपराध शामिल हैं। यूनिसेफ का कहना है कि बच्चों के मानवाधिकारों का ये व्यापक उल्लंघन सीरिया, कांगो गणराज्य, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान और म्यांमार जैसे देशों में बड़े पैमाने पर देखा गया है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन ने सोमवार को राजधानी काबुल में हुए चरमपंथी हमले की तीखी निंदा की है। ये आत्मघाती हमला घनी आबादी वाले इलाके में हुआ जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अनेक घायल हो गए। इस आत्मघाती हमले का निशाना एक सरकारी इमारत थी। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अध्यक्ष तादामीची यामामोतो ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के घातक हमलों को किसी भी आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। उनका कहना था कि इस तरह के हमलों ने अफगान परिवारों के लिए ऐसी भारी तकलीफें और मुश्किलें पैदा कर दी हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सभी अफगान लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अफगान मिशन के मुखिया तादामीची यामामोतो का कहना था कि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है जिसका नेतृत्व अफगान लोग ही करें और जिसके जरिए अफगानिस्तान में युद्ध का खात्मा होकर शांति स्थापित हो। इस शांति प्रक्रिया के जरिए अफगान सरकार अफगान लोगों को तकलीफों से बचाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेगी। इसराइल द्वारा कब्जा किए हुए फलस्तीनी क्षेत्र में साल 2018 के दौरान 295 लोगों की मौत हुई और 29,000 से ज्यादा घायल हुए। फलस्तीनी क्षेत्रों में मानवीय सहायता का प्रबंध करने वाली एजेंसी ओचा का कहना है कि फलस्तीनी लोगों की ये मौतें इजरायली सेनाओं द्वारा हुई हैं। एजेंसी का ये भी कहना है कि वर्ष 2014 में गाजा युद्ध के बाद से किसी एक वर्ष के दौरान होने वाली मौतों की ये सबसे बड़ी संख्या है। एजेंसी ने कहा है कि वर्ष 2018 में इजरायली सेनाओं के हमलों में जख्मी होने वाले फलस्तीनी लोगों की संख्या साल 2005 के बाद सबसे ज्यादा रही। OCHA यानी ओचा ने 2005 में ही फलस्तीनी क्षेत्रों में हताहतों की संख्या के बारे में सटीक रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। एजेंसी का कहना है कि एक चिंताजनक चलन ये देखा गया है कि फलस्तीनी इलाकों में जबरन बसाई गई यहूदियों की बस्तियों में रहने वाले लोगों द्वारा फलस्तीनियों पर हमलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 265 ऐसे मामले दर्ज किए गए जिनमें फलस्तीनी इलाकों में बसाई गई यहूदी बस्तियों में रहने वाले लोगों ने फलस्तीनियों पर हमले किए और उनमें या तो उन फलस्तीनियों की मौत हो गई या फिर वो घायल हो गए। साथ ही फलस्तीनियों की संपत्ति को नुकसान भी हुआ। वेस्ट बैंक में इसराइल द्वारा इमारतों को गिराने का काम पूरे साल जारी रहा, मगर कुल मिलाकर कम संख्या में फलस्तीनी लोग विस्थापित हुए। गौरतलब है कि इसराइल ने गाजा पट्टी की जमीनी, समुद्री और हवाई रास्तों से नाकाबंदी यानी ब्लॉकेड कर रखा है, जो इस साल भी बहुत व्यापक रूप से लागू किया गया। इसराइली नाकेबंदी की वजह से गाजा में जरूरी चीजें भी नहीं पहुंच पा रही हैं। इस वजह से गाजा की करीब 68% आबादी के पास खाने पीने का सामान समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहा है, यानी ये आबादी गरीबी में जीवन यापन करने को मजबूर है। यमन सरकार ने हुदायदा बंदरगाह शहर में सरकारी कर्मचारियों को दिसंबर से वेतन देने की घोषणा की है, जिसका संयुक्त राष्ट्र ने स्वागत किया है। यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरिश के विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स ने इसे एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम करार दिया है। उन्होंने इस कदम को आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भी अहम बताया है, साथ ही इससे यमन के लोगों की तकलीफें दूर करने में मदद मिलेगी। मार्टिन ग्रिफिथ्स ने ट्वीट के जरिए जारी संदेश में उम्मीद जताई कि इस तरह के और सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। खबरों में कहा गया है कि यमन सरकार पिछले करीब 2 वर्षों से सरकारी कर्मचारियों को मासिक वेतन नहीं दे पा रही थी। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले यमनी मुद्रा रियाल के मूल्य में भारी गिरावट आई है। इस वजह से बहुत से लोगों को भीषण गरीबी का सामना करना पड़ा है और बहुत से लोग कुपोषण का शिकार हो गए हैं। लाखों लोग अकाल के हालात में रहने को मजबूर हैं और मानवीय संकट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे विश्व का भीषणतम मानवीय संकट करार दिया है। ध्यान रहे कि दिसंबर में ही संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने यमन के युद्धरत पक्षों के बीच स्वीडन में शांति वार्ता का पहला दौर संपन्न कराया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित करके उस शांति वार्ता में हुई सहमति को मंजूरी दी थी। उस सहमति के अंतर्गत शांति वार्ता का अगला दौर जनवरी में होगा। इस बीच 18 दिसंबर से युद्ध विराम लागू है, लेकिन उसे बहुत नाजुक समझा जा रहा है क्योंकि युद्धरत पक्षों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP इंडोनेशिया में समुद्री तूफान सुनामी से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए जरूरतों का आकलन कर रही है। गौरतलब है कि 22 दिसंबर को इंडोनेशिया के तटीय इलाकों में आई सुनामी ने भारी तबाही मचाई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम इंडोनेशिया के सामाजिक मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रभावित इलाकों में करीब 27,000 लोग विस्थापित हुए हैं और 1,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। संगठन विस्थापित लोगों की जरूरतों का आकलन करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तैनात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसी ओचा की खबरों के अनुसार गुरुवार तक मिली जानकारी के मुताबिक 430 लोगों की मौत हो चुकी थी और 125 लोग लापता थे। ये आंकड़े इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी BNPB ने जारी किए थे। लगभग 1,000 घर पूरी तरह से तबाह हो गए या उन्हें व्यापक नुकसान पहुंचा है। इंडोनेशिया सरकार के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठन भी मदद कर रहे हैं। इस अभियान में प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, लापता लोगों की तलाश करने, चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने और खाने पीने के सामान, पानी, साफ सफाई का सामान, टेंट और कंबल वगैरह की समुचित आपूर्ति करना भी शामिल है। आप सुन रहे थे संयुक्त राष्ट्र समाचार। मैं हूं विभूति शर्मा, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।